रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। शूर्पणखा भगवान के इशारे से लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान के काट देने के बाद रोती बिलकती चिल्लाती पूरे जंगल को चीख से भरती हुई वह खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण के बीच में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। असल में भगवान ने नाक कान काटे तो भगवान उसको ताड़का के समान मार भी सकते थे, लेकिन यहां उनको विशेष लीला करनी थी। रावण को चुनौती दी है, यदि शूर्पणखा को मार देते तो ये रामचरितमानस आगे ये राम जी का चरित्र आगे कैसे बढ़ता है भगवान जाने। नाक कान काटने का अर्थ है उम्र भर के लिए उसको सजा दी भगवान ने। क्यों? उसने कहा कि मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी, तुमको देख करके थोड़ा थोड़ा मन आप में लगा है। ये थोड़ा मन लगा है ना, ये भगवान कहते हैं कि ये असुर स्वभाव होता है। थोड़ा मन तो शूर्पणखा का भी लग गया। लोग देखते हैं क्या करें, घर का भी काम धंधा करते हैं और जो है थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति भगवान को पसंद नहीं है। भगवान तो गीता में कहते हैं कि मुझे तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश है, अनन्य भाव से जो मुझे चाहते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूं। तो जो मनु माना कछु तुम्हें निहारी ये बात थी ना, ये भगवान को बहुत अप्रिय लगी। और फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा तो लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा तो राम जी के पास आई, फिर इधर उधर। ये जो डगमगाट की स्थिति है, कई लोग कहते हैं कि जब हम संसार में जाते हैं तो संसार की बातें अच्छी लगती हैं और सत्संग में जाते हैं तो सत्संग अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए। तो भाई इसके लिए तो और शास्त्रों में संतों ने यही कहा है कि बहुत ये स्थिति खतरनाक मानी गई है। संसार में जाने पर संसार जैसा हो जाना, फिर भगवान को भूल जाना, और फिर सत्संग में आते हैं तो कहते हैं हमको भगवान की बात अच्छी लगती है पर संसार में जाते ही संसार अच्छा लगने लगता है, तो ये शूर्पणखा जैसी स्थिति है, ऐसा संतों का कहा हुआ है। अस्तु, अब शूर्पणखा खरदूषण के पास विलाप करते हुए गई और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाई, एक हर दूषण तीसरा धिक्कार तुम्हारे बल पौरुष को, तुम इतने बल का अभिमान करते हो, तुम्हारी बहन की ये दशा हुई है। बात क्या हुई, तुम चिल्लाती हो और तुम्हारे नाक कान किसने काटे, तुम सब बात तो बताओ। तब उसने सब बात बताई, कि देखो ऐसे ऐसे दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। देखो शूर्पणखा जहां भी गई है, चाहे खरदूषण के पास जाए और चाहे रावण के पास जाएगी, कभी अपनी गलती नहीं बताएगी, अपनी गलती नहीं बताएगी। इसी कारण से सब ये अनर्थ हुआ, अपनी गलती नहीं बताएगी। तो खरदूषण वगैरह ने यही सोचा कि अच्छा हमारे इस क्षेत्र में आकर ऐसे कौन राजकुमार आ गए और सुंदर स्त्री को लेकर जंगल में आए कि हमारे रहते हुए और हमारी बहन का इतना अपमान कर दे। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ आदि पर बैठ करके शूर्पणखा को आगे किया कि तुम आगे चलो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अशुभ तो यही हो गया, नाक कान काटने वाला जब सेना का अगुवा हो, नाक कान जिसके कट गए वो सेना का अगुवा हो गया और विजय की आशा से जाए। अशुभ रूप श्रुति नाशा हीनी, अशुभ रूप वाली को आगे कर दिया तो वहां अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। कभी गीद आए तो वो आकर के ऊपर बैठ जाए, रथ के ऊपर बैठ जाए, किसी के सिर पर बैठ जाए, और भी अनेक प्रकार के अपशकुन हुए। तो ऐसा लगने लगा कि मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने दुस्साहस के साथ मृत्यु को भी भुलाया। क्या है, ऐसा क्या होता है दो राजकुमार से, अरे ये सब शकुन है, ये तो मृत्यु को बताने वाला है, ना 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 कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे, मन में बड़ा हर्ष था, तो कोई कहने लगे कि देखो अपने जाएंगे जाति दोनों राजकुमारों को पकड़ लेंगे और स्त्री को ले आएंगे। इनको दोनों जाना तीन पांच करे दो ही तो है, मार देंगे। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा मारना नहीं है, जिए तो धरो दो भाई, दोनों को जिंदा ही पकड़ लो, पूरा परिचय ले ओ, उन्होंने हमारे बहन के नाक कान काटे तो अपने भी इनको छोड़ेंगे नहीं, नहीं। और स्त्री को छुड़ा लेंगे। ऐसे बोलते बोलते वे उस जंगल में वहां तक पहुंच गए जहां भगवान राम लक्ष्मण और सीता विराजमान थे। आकाश में खूब धूल छाई और सेना के आने की जो है गर्जना सुनी, रथों की गड़गड़ाहट सुनी, लोगों के जोश भरे वाक्य सुने। तो उस समय में भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, देखो ये माया का प्रसंग है, इसको ध्यान रखना। देखो लक्ष्मण, तुम सीता को यहां से ले जाओ और ले जा करके कहीं इसको छिपा दो, पर्वत की गुफाओं में ले जाकर छिपा दो। कितनी विशाल सेना यहाँ आ रही है, सजग होकर के तुम इसकी रक्षा करना, मैं अकेला युद्ध करता हूं। अब देखो यहाँ लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि महाराज ऐसे कैसे होगा, इतने बड़े सेना आ रही है और आप मुझे यहां भेज रहे हो, न तो लक्ष्मण ने कुछ कहा और न सीताजी ने कहा। सीताजी ने भी ये नहीं कहा कि नाथ हम आपको अकेला कैसे छोड़ देंगे, सेना अकेला नहीं छोड़ सकते। न सीताजी ने कुछ कहा, न लक्ष्मण ने कुछ कहा, और जो है जो ही भगवान ने कहा तो लक्ष्मण जी रवाना होंगे। चले सहित श्री सर धनु पानी, सीता जी की रक्षा करे लक्ष्मण जी, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, बस वो तो उधर चले गए। इधर क्या हुआ, अब देखो ये क्यों भगवान ने सीता को और लक्ष्मण को वहां से हटाया, कि भगवान को यहां अपनी माया करनी थी, माया फैलानी थी। भगवान ने यहां जैसी माया के साथ युद्ध किया है, इतनी माया भगवान ने रावण के साथ लंका में भी नहीं की है, क्योंकि ये माया की जगह है। भगवान ने देखा कि ओहो खूब बड़ा रिपु समुदाय दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो भगवान ने धनुष डाकर टंकार की। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सूह क्यों, जटा जूट बांध लिया और ऐसा लगने लगा कि जैसे मरकत पर्वत पर कोई बिजली है वो चमकती है, भगवान का शरीर तो है मरकत पर्वत के समान, और जो धनुष है यूं टेढ़ा टेढ़ा यूं, वो धनुष है बिजली के समान चमकता है, सोने का धनुष। और उसमें जो ये हाथ यूं चलता है, कोटि सो जुग भुजंग जो, यूं हाथ यूं चलता था बाण बाण लगाते यूं, तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों ये सर्प है ये इसके लिपटते हों, ऐसे लग रहा है। भगवान के तुनीर में बड़े दिव्य बाण है और भगवान यूं ऐसे पोजीशन में खड़े हैं जैसे कोई हाथियों के समुदाय को देख करके मृगराज खड़ा रहता है, निर्भय होकर के जोर से गूंजता है, ऐसे भगवान निर्भय होकर के खड़े रहे। और इधर में वो भी जब पास में आए तो चिल्लाने लगे, आई गए बगमेल धरव धरव धावत सरे, इतने बड़े योद्धा हो करते क्या हो, जाओ पकड़ लो इसको, ये अकेला ही तो है, पकड़ो पकड़ो। जथा बेबिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज, जैसे प्रातःकाल सूर्योदय का समय होता है उस समय में मंदेहा नाम के राक्षस होते हैं। देखो अपने यहाँ ये कितनी बढ़िया रीति है कि प्रातःकाल उषा काल में सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो क्यों देते हैं जल, सूर्य के यहाँ अपना ये इतनी सी लुटिया है तांबे की, उसमें जल देते हैं, क्या मिलता है सूर्य भगवान को, अच्छा इतने जल से क्या होता है, तो भाई देखो जिस समय ये जल गिरता है ना तो उसके छींटे उछलते हैं, और जल चढ़ाने वाला बोलता है ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ये बारह बार डालते हैं, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। तो वो जल डालने पर ये छोटे 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 कण उछलते हैं, इन कणों से सूर्य भगवान को चारों तरफ घेरने वाले मंदेहा नाम के राक्षस भग जाते हैं। तो ये सूर्य भगवान की सबसे बड़ी सेवा होती है। जो सूर्य हमारी सृष्टि में कितने कितने गंदगी को सोखते हैं और कितना सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं, यहाँ शैत्य दूर करते हैं, भय दूर करते हैं, उन भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए हमको प्रातःकाल उगते अवस्था में जल देना चाहिए। तो जैसे सूर्य के चारों तरफ मंदेहा राक्षस मंडराए रहते हैं, ऐसे भगवान को अकेला देखकर चारों तरफ मंडरा गए। प्रभु विलो की सर सकई न डारी। अब क्या हुआ कि जब भगवान को एक तक उन राक्षसों ने देखा तो अरे ठहरो 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 ठहरो, इतना सुंदर भगवान का रूप एक टक होकर के देखने लगे, रही ऐसी सुंदरता संसार में कहीं नहीं मिलेगी। खरदूषण ने देखा कि अरे ये तो छोटी सी बात है, हमारी बहन के नाक कान काट दिए तो सहन करिए, कितना सुंदर है ये राजकुमार, कितना सुंदर है। अपने एक दूत को बुलाया खर और दूषण ने, उसको समझा करके कहा कि देखो दूत कितना सुंदर ये बालक है, ये मनुष्यों का भूषण है, हमने कितने ही ऋषि मुनियों को देखा है, देवताओं को देखा है, मनुष्यों को देखा है, असुरों को देखा है, नागों को देखा है, कितनों को ही हमने देखा है, कितनों को ही हमने जीता है, परंतु ऐसी सुंदरता हमने तो इस जन्म में कभी देखी भी नहीं है। मैं मानता हूं कि इसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, ये मैं मानता हूं, अपराधी तो है, फिर जाने क्या बात है, इसको देखकर मन में करुणा उमड़ती है कि ऐसा पुरुष फिर देखने को नहीं मिलेगा, ये वध के लायक नहीं है, इसलिए इसको जाकर तुम बोलो, इसको जाकर तुम कहो कि अय बालक खरदूषण की आज्ञा है, तुम कहाँ तुम्हारा भाई, वो जहां भी हो हमको देख करके छिप भी गया हो तो कोई बात नहीं, तुम दोनों यहां से चले जाओ, तुम्हारे साथ एक सुंदर स्त्री है, वो हमको दे दो। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वौ भाई। तुम चले जाओ यहां से, ऐसी बात जाकर उनको तुम सुनाना कि ताकि उसके मन में हमारे प्रति भय पैदा हो और भय के मारे वो सीता को तो दे देवे और ये राम और लक्ष्मण यहां से भग जाए। दूत गया, दूत जाकर के और राम जी से कहने लगा, आपका नाम राम है? है तो खरदूषण ने आपको आज्ञा दी है कि आप और आपका भाई जहां कहीं भी हो चले जाओ, केवल आपकी स्त्री है उसको यहां छोड़ दो। भगवान ने कहा, अरे हम तो क्षत्रिय कुमार है ना, हम तो शिकार खेलते रहते हैं, हमारा काम शिकार खेलने का है और तुम्हारे जैसे नीच पशुओं का तो शिकार करना हमारा शौक है। शत्रु को बलवान देख करके डर जाना, भग जाना, छिप जाना, ये कायरों का काम हमारे द्वारा नहीं हो सकता। हमारे सामने तो स्वयं मौत भी आ जाए उससे भी हम खूब आराम से लड़ सकते हैं। यद्यपि हम दिखने में मनुष्य हैं, लेकिन दनुज कुल घालक, हम राक्षसों के कुल का नाश करने वाले हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम दिखने में बालक हैं पर खल सालक हैं। सालक माने खलों के अंदर शूल पैदा करने वाले, खलों को दुख देने वाले हैं हम। यदि हमारे परिचय से तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम भग जाओ, नहीं तो फिर हमारे सामने युद्ध करो, डरते क्यों हो? समर विमुख में हताऊ न का हो। यदि आप अभी सीधे पीठ दिखाकर चले जाओगे तो ये मैं बाण शत्रु को पीठ दिखाते समय नहीं छोड़ा करता हूं, चले जाओ। तुम मुझे ये शिक्षा देने आए हो, तुम यहां गर्जना पूर्वक युद्ध करने आए हो। अरे जब रण चढ़ जाता है तब वहां शत्रु पर कृपा करना ये तो एक कायरों का सा काम है। मैं तो तुम पर कृपा करूंगा नहीं, तुम मेरी कृपा लेना चाहो तो चुपचाप यहां से रवाना हो जाओ। दूतों ने देखा कि यहां तो कोई बात लगी नहीं, जाकर के खरदूषण से ये कहा तो सुनते ही खरदूषण का अहंकार अपने अंदर से ऐसा भड़क उठा, अच्छा हमको ऐसा बोलता है वो, हम उसके अंदर पैदा हो गए। उरदा है हु कहे की धारा उधाए विकट भट रजनी चरा। हे राक्षसो, तुम बड़े वीर योद्धा हो, अब तुम अपने अपने बाण ले ओ, धनुष ले ओ, तोमर ले ओ, शूल ले ओ, कृपाण ले ओ, और परिग ले ओ, फरसा ले ओ, और लेकर के तुम सीधा इस राम के ऊपर एक साथ आक्रमण करो। भगवान ने धनुष लेकर टंकार किया, धनुष को बजाया, अभी तो अभी बाण नहीं छोड़ा है, धनुष बजाया। उनके कान के अंदर इतना जोर से शब्द हुआ है, घबराने लग गए। भय बधिर व्याकुल जात धानन ज्ञान ते अवसर राख, चक्कर खा के गिर गए। पता ही नहीं इतना जोर से शब्द हुआ, उनके कान सहन नहीं कर सके। और फिर वे बाद में वापिस वे उठ के खड़े हुए और भगवान के ऊपर बाण बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करिकाटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे पुनि छाड़े निज तीर। भगवान ने उनके, अब देखो भगवान भी यहां कैसा युद्ध कर रहे हैं, उनके सब शस्त्रों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके शस्त्रों को तो नष्ट कर दिया और फिर अपने जो निज तीर है, निज तीर अपने खास बाण है ना, वो उनके ऊपर लगाए। ये खास बाण और जो बेखास प्राणी क्या होते हैं जी, विशेष बाण और साधारण बाण क्या होते हैं, निज तीर और पराया तीर ये क्या होता है? तानि सरासन श्रवण लगे पुनि छाड़े निज तीर, ये निज तीर है ना, अपने खास बाण। ये खास बाण क्या होता है? खास बाण वो है जिसके लिए भगवान ने लक्ष्मण जी को सीता जी को तो अलग किया, और अपने वो बाण जिस बाण से इनका कल्याण हो जाए। एक तो इनके शस्त्रों को मारने वाला बाण लगाया और एक निज तीर लगाया भगवान ने कि इनका मन मेरे में लग जाए और ये कल्याण को प्राप्त हो जाए। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहुव्याल। ऐसे भगवान के बाण चले जैसे कोई सांप फुंकार करता है और सांप एक साथ जाकर के और फुंकार करते हों, ऐसे भगवान के बाण थे। जब ऐसे भगवान के बाण देखे तो ये निशाचर सब यूं मुड़ गए, यूं मुड़ मुड़ करके देखने लगे राम जी को यूं कि कहीं हमारे सामने नहीं आ जाए, और अपनी सेना को विचलित देख करके खर दूषण तीनों के तीनों चिल्लाए, क्या तुम मुड़ मुड़ करके देखते हो, भगते हो, जानते हो कि नहीं, तुम यदि यहाँ पीठ दिखा करके भगोगे तो हमारी नाक कटाओगे और हम तुम्हें किसी प्रकार से छोड़ने वाले नहीं है, हम तुम्हें मार देंगे, तुम मृत्यु से कैसे बच सकते हो, वापिस आ जाओ। फिर मरण मन महुठान, विचार कर लिया कि इधर जाएंगे तो मरेंगे, इधर मरेंगे, अब मरना तो है ही, चलो युद्ध करते ही मरो। खूब जो है आपस में वहां युद्ध होने लगा, लगे कटन विकट पिशाच, ये पिशाच लोग भी कटने लगे। अब देखो ध्यान देना, हाथ कट गया और ये सिर कट गया, वो धड़ नीचे पड़ गया, वो पड़ा हुआ धड़ भी वापस उठ गया है। ये धनुष ये वाद मायावी जगह है। भटक कटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाखंड। फिर वो उठ गए और उठ करके और युद्ध यूं यूं करने लगे। पुनि उठत करी पाखंड नब उड़त बहु भुजमुंड बिनु मौली धावत रुंड। ऐसी उनकी दशा हुई। अब देखो वहां इतने में श्रीगाल वगैरह भी आए, भूत प्रेत पिशाच। ऐसा गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि उस समय ये सियाले आए, वो आए मुर्दों को देखते हैं, उनका खून बहता है, तो पिशाच लोगों ने खप्परों में खून भर लिया। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचई। और बेताल है वो क्या करते हैं कि वीरों के कपालों को लेकर के और इनको यूं बजाते हैं जैसे तबला बजावे वैसे। तो जोगिनियां हैं वो वहां पर नाचती हैं। रघुवीर बाण प्रचंड खंडनी भटन के उर भुज सिरा जह तह परई उठी लड़ई धरु 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 करई भय कर गिरा। उनके धड़ उठते हैं, चिल्लाते हैं, पकड़ो इनको, मारो इनको। तो आश्चर्य होता है कि अरे इतना इतना शरीर है, हाथ पैर उनके नहीं है, सिर भी कट गए, आवाज कैसे आती है? आती है साहब। अब इतने में ही गीद आता है, गीद आकर के आंत पकड़ कर आकाश में उड़ता है। तो वो गीद बहुत दूर तक आंत को लेकर आकाश में उड़ता है एक हिस्सा, तो दूसरा जो हिस्सा होता है उसको पिशाच पकड़ करके और यूं चलता है। ऐसे लगता है जैसे कोई पतंग पतंग को लेकर चलता हो। संग्राम पूर्ववासी मनव बहु बाल गुड़ी उड़ा वही। गुड़ी बोले पतंग, पतंग देखो आकाश में कितनी ऊंची है, लेकिन उसकी डोर यहाँ हाथ में रहती है। ऐसे ही आंत इतनी लंबी लंबी कि आंत का एक किनारा गीद लेकर के आकाश में गया और वो वहां दूसरा जो है पिशाच उसका दूसरा हिस्सा पकड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे ये धनुज है। अब भगवान उनको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, 14,000 है आखिर। तो इधर अपने सेना को विचलित देखा खरदूषण ने, तो वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे से सिरकने लगे। और सर शक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बार ही एक साथ अपने जितने शस्त्र एक साथ डालो देंगे, राम क्या क्या किस किस से युद्ध करेगा, एक साथ उन्होंने फेंका। तो भगवान ने भी क्या किया कि एक ऐसा बाण छोड़ा कि एक बाण से कितने बाण निकल गए और कितने बाण निकल कर गए, चारों तरफ बाण ही बाण हो गए, उनके सबके शस्त्र खत्म हो गए। फिर भगवान ने वहां बड़े बड़े निशाचर नायक जो सेना में आगे आगे खड़े थे वे मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। वे अनेक प्रकार की माया करने लगे, वो पड़े पड़े मरे। आप मरे नहीं हो, अब 14,000 है भगवान है अकेले, अब भगवान ने यहां पर माया की हो। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ, माया नाथ भगवान ने देखा अब मेरे को माया करनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा मोहनास्त्र फेंका कि वे 14,000 राक्षस आपस में ही एक दूसरे को राम समझ करके लड़ने लगे। अरे ये रा राम ये मारो, अरे ये रा राम, दोनों आपस में भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं। देखाई परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो, ये मरियो है ना शब्द, मारवाड़ी शब्द है। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ, अति कौतुक करियो, ये करियो मरियो, ये शब्द अपने अपने मारवाड़ी शब्द है। गोस्वामी जी महाराज ने प्रत्येक भाषा को लिया है, वो बट कहो तू बट कहो नहीं तो वो कहो भी आवे, कहो करियो मरियो हरियो, ये सब मारवाड़ी शब्द है। तो ये आपस में ऐसे लगे कि जो है एक बाण से मोहित होकर के लड़ते लड़ते एक दूसरे, ये राम ये राम ये राम ये राम है, राम राम कही तनु तजई पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे छनमऊ कृपा निधान, सबको मार दिया। फिर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और देवताओं ने फूलों की वर्षा की, हो गया काम। जब भगवान ने ये इस प्रकार से शत्रुओं को जीत लिया तब वहां इधर उधर ऋषि मुनियों के सबके भय दूर हो गए कि बस अब हमारा भय दूर हो गया, ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। लक्ष्मण जी और सीता जी, लक्ष्मण जी सीता जी को वहां पर ले आए, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने लक्ष्मण को अपने छाती से लगाया और सीता जी ने भगवान का जो सुंदर स्वरूप था उस स्वरूप के दर्शन किए। खूब अविरल अश्रुपात हो रहा था, रुका ही नहीं, सीता जी को इतना आनंद का अनुभव हुआ। ये तो हुई इधर की बात। इधर खर दूषण वगैरह का धुआं देखा, देखो धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखने का मतलब इनको जलाया और धुआं हुआ, ये बात थी क्या? धुआं का अर्थ विध्वंस, इनका विध्वंस हो गया, इनका नाश हो गया, ये सब मारे गए। तब ये शूर्पणखा रावण को जाकर के प्रेरित करने लगी, ये यहां से भगवान का वनवास का उद्देश्य पूरा हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। वनवास में भगवान क्यों आए, वनवास की लीला क्यों की? कि ये लीला उन्होंने एक तो चित्रकूट में प्रेम लीला के लिए की और एक अब ये रावण को मारने की। अब रावण को मारने के लिए, रावण को प्रेरित करने के लिए शूर्पणखा वहां पर पहुंचती है और नाक कान कटावा चीखते चीखते वो बोलती है। उसने ये नहीं देखा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, जिस देश का जो राजा है उस राजा के सामने मुझे किस प्रकार से बोलना चाहिए। देखो जिसका जहाँ सम्मान होता है उसको उस सम्मान की रक्षा करते हुए बोलना चाहिए। पर देश को सते सुरति बिसारी, उसने न तो देश देखा न कोई और देखा, न सभा देखी, कुछ नहीं देखा और जाकर के वो बड़े बनावटी ढंग से जोर जोर से वहां सभा में चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगी। करसी पान सोवसी दिन राती, हरदम बस मदिरा पान करते रहते हो, रात दिन इस नशे में पड़े रहते हो। अरे मूर्ख, तुम्हें इस बात की सुध नहीं है कि तुम्हारे सिर पर कितनी बड़ी विपत्ति नाच रही है? अरे राज तब चलता है जब नीति को जाना जाए, नीति के बिना कभी राज्य नहीं चलता और धर्म कभी धन के बिना नहीं होता, और कोई भी सत्कर्म है वो भगवान के कर्म अर्पण किए बिना नहीं होता। अब देखो ये भगवान को ये भी मानते थे। सेठ जी ने कहा कि भाई आजकल के नास्तिक लोगों की अपेक्षा हमारे पुराने जमाने के भगवान से बैर विरोध रखने वाले राक्षस अच्छे थे, क्योंकि राक्षस लोग भगवान को मानते तो थे, आजकल के नास्तिक लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। कौन भगवान, कैसा भगवान? शूर्पणखा बोल रही है, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, भगवान के समर्पण किए बिना कोई कर्म सत्कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही विद्या बिनु विवेक उपजाए, कोई भी विद्या है उसको विवेक के बिना कोई धारण कर सकता है? उसमें अपना विवेक चाहिए, अपना विवेक। कुछ भी पढ़ो तो विवेक को जागृत करने के लिए विद्या होती है, अक्षरों को सीखने के लिए थोड़ा ही होती है, विवेक को जागृत करने के लिए होती है। और संगते जति, कितना ही बड़ा साधु सन्यासी हो, बहुत ऊंचा हो, लेकिन उसका संग यदि खराब है तो उसका पतन हो जाता है। ऐसे ही कितना ही बड़ा त्रिभुवन का राजा हो और बहुत बड़ा वो जो है ऐश्वर्यवान हो, लेकिन उसके पास में खोटी बात हो, कुमंत्र होता है, कुमंत्रणा होती है, ठीक निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो उसका पतन हो जाता है। मानते ज्ञान पानते लाजा, और ज्ञान तो खूब है लेकिन घमंड आ गया तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। साहब हम बहुत जानते हैं, बड़े विद्वान हैं, हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे अभिमान आ जाए वो कोई वो ज्ञान उसकी शोभा नहीं देती, मान है उस ज्ञान का पतन कर देता है। और पानते लाजा, मदिरा पान वगैरह करने वाले की लाज शर्म सब खत्म हो जाती है। प्रीति प्रणय बिनु, प्रेम के बिना, नम्रता के बिना प्रेम खत्म हो जाता है। किसी आदमी का आदर सम्मान किए बिना के साहब हमारा ये प्रेमी है कहते रहो, उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि विनती नहीं है, विनय नहीं है, नम्रता नहीं है तो प्रेम चल नहीं सकता है। और कितना भी गुणवान आदमी क्यों न हो, मद आ गया, घमंड आ गया तो पतन हो गया। ऐसी हमने बातें सुनी है, ये कौन बोलती है? शूर्पणखा, ऐसी बातें सुनी है। महाराज जी कहा करते थे कि भाई दूसरों को सुनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें तो राक्षस लोग भी सुनाते, शूर्पणखा भी सुनाती है। शूर्पणखा ने कितना अच्छा उपदेश दिया है। और भागवत के अंदर हिरण्यकश्यप ने सातवें स्कंद में बहुत अच्छा उपदेश दिया। कंस ने वसुदेव और देवकी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है, ऐसे करके बहुत अच्छा उपदेश दिया। इस रामचरितमानस में भी मेघनाद मरता है तो रावण बहुत अच्छा उपदेश देता है। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरे ही ते नर्न घनेरे। इसी प्रकार से शूर्पणखा ने एक एक बात अच्छी कही है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु आई गनियन छोट करी। देखो प्रभु, देखो महाराज, देखो लंकाधिराज, एक तो शत्रु को, एक रोग को, एक अग्नि को, एक पाप को, एक सांप को, इन सब को कभी छोटा नहीं मारी क्या? ये छोटा सा पाप है? नहीं नहीं नहीं, छोटा सा भी पाप होगा वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा। याद है कि छोटी सी गुमड़ी है, क्या है परवाह नहीं की, तो उस गुमड़ी के द्वारा चलते 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 फिर आगे विस्तार लेने पर बड़ा रूप भी हो सकता है। कोई भी बीमारी है उसको भी छोटी नहीं माननी चाहिए। आग थोड़ी सी लगी, कोई थोड़ा सा बुझ जाएगी, लगती रहती है। ऋषिकेश के पहाड़ों में कभी आग लगती है तो कई दिनों तक वहां ये आग जो है पर्वत जलते रहते हैं। तो रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनियन छोट करी। इस प्रकार से वो विलाप करने लगी सभा के अंदर ही। रावण कहने लगा कि अरे शूर्पणख हे, तेरी ये दशा ये किसने की है बताओ? तू मुझे क्यों इस प्रकार से बोलती है? मुझे तो इतना ही बताओ कि तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं? कौन अपने जीवन से अब उपराम हो गया है? कौन है ऐसा जो अब जीना नहीं चाहता हो, वो बताओ। वो खड़ा हो गया अपने सिंहासन से, ये रावण। और उस जमीन पर पड़ी हुई अपनी बहन को बड़े स्नेह से उठाता है। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे नाक कान किसने काटे? तो वो शूर्पणखा बोलती है कि मैंने सब पता किया है, अयोध्या के महाराज दशरथ, उनके दो राजकुमार यहां जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे, मुझे लगता है कि उन्हीं की करतूत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वे एक भी ऋषि मुनि को मारते नहीं है और हर एक ऋषि मुनि से बड़ा प्रेम करते हैं, और आपकी जो खरदूषण सेना, खरदूषण भाई है, उनकी 14,000 सेना सबको समाप्त कर दिया है, और ऋषि मुनि लोग इतने आनंदित हैं, उनको अभय कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि राम हम तुम्हारा आश्रय पाकर के अब निर्भय हो गए हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। दिखने में वे बालक के समान दिखते हैं पर वे परम धनुर्धर है और गुणों की खान है। उन दोनों का बल प्रताप मैंने अपने आंखों से देखा है। दुष्टों को मारने के लिए, ऋषियों को सुख देने के लिए आए हैं। शोभा के वे खजाने हैं, उनके साथ में एक रति से भी 100 करोड़ गुना श्रेष्ठ उनके पास स्त्री है, उसका नाम सीता है। तासु अनुज काटे सुतिनासा, उस राम का जो छोटा भाई है ना लक्ष्मण, उसने मेरे नाक कान काटे हैं। और कहा अच्छा तू रावण की बहन है, अच्छा 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 रावण की बहन है तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नाक कान काट दिए केवल इसी लिए कि रावण की बहन है। मैंने खरदूषण को खूब पुकारा, जोर जोर से पुकारा, खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छनमऊ सकल कटक उन मारा, और वो आए लड़े तो मैं देखती रह गई कब वो सेना खत्म हो गई, कब मारे गए कुछ पता ही नहीं चला। ये मेरी दशा हुई। खरदूषण तीसरा का इस प्रकार से नाश सुनकर के रावण तो वहां चक्कर खाने लग गया। शूर्पणखा को कहा कि बहन अभी तो जाओ विश्राम करो, ये नाक कान तुम्हारे काट दिए गए ना, इसकी मरहम पट्टी कराओ और जो है आगे का विचार हम आगे करेंगे। गयउ भवन अति सोच बस, अब वो मन में बहुत दुखी हो गया, जाकर के अपने पलंग पर बैठ गया, सोचता है बैठे बैठे क्या करें। अब देखो रावण की सोच बहुत अच्छी है, ये अध्यात्म रामायण से तुलसीदास जी महाराज ने प्राय करके, देखो कथा भाग तो वाल्मीकि रामायण की है ही, लेकिन भाव की विशेष बातें हैं, भक्ति की बातें हैं गोस्वामी जी महाराज पर अध्यात्म रामायण की पड़ी है। अब देखो रावण यहां कितना अच्छा विचार करता है। रावण सोचता है ओहो मेरे अत्याचार बहुत बढ़ गए, देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, नागों में, पशु पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है कि जहां पर मेरे CID, गुप्तचर, अनुचर, सेवक न रहते हो, सब जगह मेरे आदमी रहते हैं। और वो इस बात का हरदम ध्यान रखते हैं कि रावण की शक्ति का मुकाबला करने वाली कोई शक्ति नई पैदा तो नहीं हो रही है। मैंने यही समझ करके यहां से उत्तर की ओर खरदूषण को भेजा है, जिनको मैंने मेरे समान बलवान समझा है, और इतनी विशाल सेना के साथ उसको वहां रखा है, क्योंकि मैं यहां लंका में बड़ा सुरक्षित हूं, लंका के तरफ से तो कोई मुझे खतरा नहीं है, केवल उत्तर दिशा से मुझे खतरा था, और वहां पर मैंने मेरे खरदूषण तीसरा को और 14,000 सैनिकों को इसीलिए रख रखा था कि उधर से कोई समाचार हो तो ये अपने आप युद्ध करेंगे, निश्चिंत होकर बैठा था। पर खरदूषण तो मेरे समान बल वाले, वे भी मारे गए, हो न हो ये बिना भगवान के तो मारे नहीं जा सकते हैं, मैंने भी तो कोई कम अत्याचार थोड़ी किया है, अपना आप ही सोच रहा है वो। हाँ, देवताओं को आनंदित करने के लिए पृथ्वी पर हमारे द्वारा फैलाए जाने वाले पाप का नाश करने वाले भगवान ने अवतार लिया है। तो ऐसे भगवान के साथ मैं हठपूर्वक बैर करूंगा, जबरदस्ती जाकर बैर करूंगा, और उस बैर करने से प्रभु सर प्राण तजे भवतरहु, वो भगवान क्रोध में आकर मेरे बाण लगाएंगे और वो बाण मेरे शरीर में लगेगा और मैं संसार से पार हो जाऊंगा। फिर मन में एक संकल्प आता है कि भाई बैर करके तुम भगवान के बाण से मरना चाहते हो, प्रेम करके ही मर लो। तुम यहां से प्रेम करने के लिए क्यों नहीं चले आते? फिर दूसरा भाव पैदा होता, हो यही भजनन तामस देहा, प्रेम के लिए तो भजन करना होगा। और इस शरीर से मैंने सदाई तमोगुणी काम किया है, मारने काटने के अलावा, दूसरे के अनिष्ट के अलावा मैंने कोई शुभ काम नहीं किया, इसलिए इस शरीर के कर्म के जो संस्कार मेरे अंदर पड़े हैं वो मेरे को भजन में लगने नहीं देंगे। इसलिए भगवान का भजन करना तो अब मेरे लिए मुश्किल है। यदि वास्तव में ही मनुष्य का रूप धारण करके भगवान आए हैं तो मनसा वाचा कर्मणा अब भगवान से ही संबंध करना है। और जो नर रूप भूप सुत को, और वास्तव में कोई राजा के ऐसे ही कोई राजकुमार आए होंगे, उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा और उनको आराम से जीत लूंगा। ऐसा विचार करके रावण अपने रथ के ऊपर बैठ करके अकेला ही चला, किसी से ही विचार नहीं किया। रात का समय था, चुपचाप महल से निकला और समुद्र के किनारे मारीच बैठा हुआ था, उस मारीच के आश्रम में गया। ये तो है वहां की बात। इधर यहां राम जस जुगति बनाई, यहां राम जी महाराज ने जो जुगति बनाई है, हे पार्वती उस कथा को तुम सुनो। तो यहां जुगति क्या बनाई, लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। लक्ष्मण जी तो कंद मूल फल लेने गए, भगवान ने कहा सीते देखो अब मैं एक बहुत सुंदर नर लीला करने जा रहा हूं, उस नर लीला में तुमको भी कुछ लीला करनी है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि में जाकर निवास करो और मैं अब निशाचरों का नाश करने पर तुल चुका हूं। जब राम जी महाराज ने इतनी आज्ञा दी तब भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख करके और वहां अपने ज्ञान से, अपने कृपा से, अपने सामर्थ्य से अग्नि प्रकट की और उस अग्नि के अंदर सीता जी विराजमान हो गईं और एक वैसा का वैसा रूप, प्रतिबिंबित रूप वहां पर रख दिया। निज प्रतिबिंब राखि तह सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। पता ही नहीं चले, वही आवाज, वही चलना, वो का वो वस्त्र, वो का वो रूप सीता ने वहां पर अपना बना दिया। ध्यान से सुनना, लक्ष्मण हूं यह मर्मुन जाना। लक्ष्मण जी को इस मर्म का कुछ पता नहीं था कि भगवान यहां कौन सी लीला क्या करने जा रहे हैं। क्यों भगवान ने लक्ष्मण जी को क्यों छिपाया, लक्ष्मण जी से क्यों छिपाया, कि लक्ष्मण जी से छिपा लेते, नहीं छिपाते तो ये रामलीला यहीं खत्म हो जाती, ये लीला यहीं खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो मारीच के पास लक्ष्मण जी जाते ही नहीं, और सीता जी ने जो कठोर वचन कहे लक्ष्मण जी को, उन कठोर वचनों को लक्ष्मण जी हृदय में मानते ही नहीं। अरे वो तो मायावी सीता बोलती है, और लक्ष्मण जी नहीं जाते तो फिर रावण उधर से आकर के सीता का हरण कर नहीं सकता था। ये रामलीला यहीं खत्म हो जाती। इसलिए लक्ष्मण जी को इस लीला से दूर रखा कि ये इस रहस्य को न जाने। लक्ष्मण जी को देखो, भगवान ने पहले कितना बढ़िया ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान के द्वारा भी लक्ष्मण जी इस माया के रहस्य को समझ लेते। देखो, माया का रहस्य, भगवान की माया का रहस्य है ना, ये भगवान यहाँ छिपाना चाहते थे। जगत की जो माया है वो रहस्य भगवान ने बता दिया। जिस माया के रहस्य की आवश्यकता है उसको जानिए, भगवान की माया के रहस्य के जानने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये बात लक्ष्मण जी के प्रसंग से भगवान ने सबको बताया। हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान की लीला है, भगवान की अपनी निज माया है, उसमें तो अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, जानना चाहते हैं भगवान ने ये लीला क्यों की, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये 5 दिन के ही थे तो उन्होंने ताड़का को कैसे मार दिया, उन्होंने पूतना को कैसे मार दिया, 5 दिन के थे भगवान, ऐसे भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया। ये भगवान के लीला मय जो माया है, लीला माया, उस लीला माया के अंदर हमको प्रश्नबाजी नहीं करनी चाहिए। हमको तो ये जगत रूप जो माया है ना, इसके विषय में सोचना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को उस माया का ज्ञान करा दिया, इस माया का ज्ञान नहीं कराया, क्योंकि इस माया के ज्ञान की लक्ष्मण जी को आवश्यकता ही नहीं थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म ने जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। देखो भगवान ये चित्रकूट में भी सीता जी को कह सकते, देख देख सीते तुम आग में लगा अपनो नयन लीला करने पर, नहीं। चित्रकूट में तो भगवान के सब प्रेमी लोग आए, भगवान के सब प्रेमी आए थे। वो जिनके हृदय में प्रेम नहीं था वो नहीं आए। कौन, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि मंथरा वाई, किसी रामायण में नहीं है मंथरा चित्रकूट नहीं गई। और जो जनकपुर की स्त्रियां थी वो भी आई है, अयोध्या की स्त्री पुरुष भी सब आए हैं, मंथरा नहीं आई। ऐसे जो भगवान के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था वो नहीं गए। तो वहां भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश इसलिए नहीं करवाया कि ये प्रेम की जगह है, सब भक्त लोगों के मिलने की जगह है, यहाँ असलियत ही रहती है, ये माया की जगह है। तो देखो यहाँ आकर के भगवान ने सीता जी का रूप बदला दिया, असली रूप तो अग्नि में समाहित कर दिया अनल समानी, और फिर इधर निज प्रतिबिंब राखित है सीता, लक्ष्मण हुए मरमन जाना। इधर रावण ने मारी से कहा, देखो गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रसंग जो है आगे जाकर के कहना चाहिए था, यहाँ बीच में क्यों लगाया। रावण मारीच के पास गया तो उसके बाद ये कहना चाहिए कि दशमुख गए जहां मारीचा, मारीच तक पहुंचा करके सीता को अग्नि में प्रवेश करा करके, और फिर वापिस गोस्वामी जी महाराज अपने को मारीच और रावण के वहां ले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि मारीच जिस प्रकार से अब माया में प्रवेश करने वाला है, वो मायामय मृग बनने वाला है, दशमुख रावण भी अपना राजत्व छोड़ करके यति का वेश बनाने वाला है, इधर भगवान पहले से ही इनकी चाल समझते हैं, सर्वज्ञ है भगवान, उन्होंने सीता जी का भी रूप बदला दिया। ये बताने के लिए है। आदमी सोचता है कि हम भगवान क्या जा रहे हैं, भगवान अंतर्यामी है, भगवान को मालूम है कि अब यहाँ सब बदले रूप आने वाले हैं, तो अपने भी रूप बदल लो, तो अपने तो वैसे के वैसे रहे और इनके रूप बदल दिए। और यहाँ देखिए राम जी महाराज ने सीता जी को लक्ष्मण जी को छिपाया इसलिए कि वो 14,000 के साथ लड़े ना, तो वो बाण भगवान ने यही चलाया है, वो बाण वहां रावण के वहां नहीं चलाया है। रावण के वहां क्यों नहीं चलाया, कि वहां इसलिए नहीं चलाया कि ये वहां केवल माया के क्षेत्र में ही भगवान को माया फैलानी थी, माया का क्षेत्र था, दसमुख रावण मारीच के वहां पर गया और मारीच साधु का रूप बनाया हुआ था, उसको बहुत प्रणाम करके और कहने लगाई। गोस्वामी जी महाराज कहते नवन नीच के अति दुखदायी, जो नीच पुरुष है वो ज्यादा हाथ जोड़ता है, नम्रता दिखाता है, जिसको जानते हैं कि नम्र नहीं है, रावण को सब जानते हैं, तो जिमी अंकुश धन उरग बिलाई भयदायक, ये बहुत दुख देने वाले होते हैं। एक तो अंकुश माने हाथी के ऊपर जो अंकुश है ना, यूं नीचा होता है तो बेचारा हाथी की खोपड़ी में दर्द होता है, ऐसे ही धनुष है यूं करते हैं तो उसका बाण लगता है, सांप है यूं करता है यूं नीचा होता रे फण से जहर फैला देगा, बिलाई बिल्ली है यूं जाकर के दही है दूध है मुंह डाल देती है, तो जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, ये सब जो है दुख देने वाले होते हैं। खल व्यक्ति होता है वो मीठा बोलता है, उस मिठास में भय पैदा होता है, अरे कैसे बोल रहे हैं। जिमी अकाल के कुसुम भवानी, बिना ऋतु के कोई फूल आते हैं तो बड़े बूढ़े सब सोचते हैं कि ये क्या हुआ भाई, अकाल पड़ गया अकाल पड़ गया। करी पूजा मारी चतब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयउतात। मारिस ने कहा अरे रावण इतनी नम्रता इतनी तुम्हारी घबराहट, बात क्या है तुम अकेले कैसे है, अक्सर आयउतात अक्सर मान अकेला, राजा महाराजा ऐसे थोड़ी आते हैं, थोड़ा सा भी कोई बड़ा आदमी होता है वो भी अपने साथ में दो चार आदमी रखता हुआ अच्छा लगता है, आप तो लंकाधिपति है और देवता असुर सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आप अकेले कैसे आए, बड़े व्यग्र लग रहे हो, घबराहट लग रही है और इस सुनसान रात में आप आए हो, बात क्या है। रावण ने कहा कि देखो हमारी बहन को कुरूप कर दिया, हमारे 14,000 सैनिकों को मार दिया, अब मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ और मैं राम और लक्ष्मण सीता इन तीनों का बदला लेना चाहता हूँ, किसी प्रकार से जय मेरी हरि आनो नृपनारी, किसी भी प्रकार से उनकी स्त्री का हरण होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक ही उपाय सोचा है कि तुम एक कपट का मृग बनो, छल करो, उनके वहां जाओ और वहां जाकर तुम ऐसा रूप बनाकर उनके चित्त को हर लो कि वो सब बहुत दूर चले जाए, पीछे से मैं सीता का हरण कर लूं। मारीच आंख फाड़ करके देखता रहा ये क्या बोलता है। मारीच ने कहा हे रावण क्या आप मदिरा पिए हुए तो नहीं हो अभी, क्या आपका बुद्धि भंडार सोचने समझने की शक्ति से खाली तो नहीं हो गया, आप किनकी बात करते हो। वही दशरथ के बेटे हैं। दशरथ के बेटे तुमने क्या क्या सुना उनके बारे में। अरे हमने सुना है वो दशरथ का बेटा है, जनक जी का जवाई है और लक्ष्मण उसके साथ में आया हुआ है, पिता ने उसको अपने वन से निकाल करके भेज दिया, अपने राजधानी से निकाल करके भेज दिया है और वो यहाँ घूमता घूमता आया ऋषि मुनियों को आनंदित करने गया। अरे उस राम के विषय में बोलते हो तुम ऐसा, देखो उसके साथ कभी आप बैर मत कीजिए, आप मेरी बात मानिए, मैं तो कहता हूँ वो राम आकर के आपको मारे भी आप मर जाइए और वो जीवावे तो आप जी जाइए, लेकिन आप उनका कभी सामना मत करना। क्यों? मैं मेरी कथा सुनाता हूं। विश्वामित्र के यहां यज्ञ की रक्षा के लिए जब वे कुमार थे वहां पहुंचे, उन्होंने एक बाण मेरे यहां लगाया, 100 योजन 400 कोस यहां मैं आकर के गिर पड़ा हूं, बिना पांख का बाण लगाया था, बाण होता है ना उसके पीछे यूं पांख होते हैं, बिना पांख का मेरे बाण लगाया, साधारण बाण लगाया हुआ, विशेष बाण होते हैं उनके पांखें होती है और साधारण बाण होते हैं वो, तो साधारण बाण लगाया इसमें मेरी ये दशा हो गई। अब देखो जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे चारों तरफ से कोई भी आवाज सुनता हूं तो कहीं रह के नाम की आवाज आती मैं तो घबरा जाता हूं। मेरी तो आज ये दशा हो गई, मेरी तो आज ये दशा हो गई कि जैसे कोई मिट्टी के घर वाला कीड़ा होता है, भृंग होता है, भौंरा, उस भौंरे के कीड़े के समान मेरी दशा हो गई है। मैं हर दम रात दिन उस राम का चिंतन करता रहता हूँ। जहां तह मैं देखूं दो भाई, अपनी इस कुटिया से बाहर आता हूँ दुबका रहता हूँ, कहीं वो दोनों हाथों नहीं गए, इतना मेरे अंदर भय बैठ गया है। मैं मानता हूं कि आप भी सूरवीर हो, परंतु कुछ भी हो उनके समान तो आप भी नहीं हो रावण, इसलिए आप उनके विरोध को कभी पूर नहीं सकोगे, आप उनके विरोध तक पहुंच ही नहीं सकोगे। आप इतना ही विचार करो कि जिन्होंने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, और जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, जिन्होंने खरदूषण तीसरा की सेना को समाप्त कर दिया, वो कोई मामूली आदमी है? इसलिए आप वापिस चले जाओ। मेरी बहन को कुरूप कर दिया, आप इसको सहन कर लो। मेरे भाइयों को मार दिया खरदूषण, इसको भी सहन कर लो। हम तो कहते हैं आपको भी मारने आए तो आप कोई भी विचार मत करो, मारे तो मर जाना। जाऊ भवन कुल कुशल बिचारी, यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हो तो आप जाओ और अपने लंका में आराम से रहो। ये सब फितूर की बातें आप निकाल दो। आपको किसने सिखाया ये? हमें ऐसा लगता है जिसने भी आपको कहा है वो आपका हितेशी नहीं है, आपका शत्रु है। शत्रु होकर आपके पास आकर आपको ये सलाह दे रहा है। आप अपने सलाहकारों को बदलिए या अपनी सलाह को बदलिए, बदलना तो पड़ेगा। रावण यूं सुनकर के सुनत जरा दीनी सी बहुगारी, खूब जलने लग गया और उसको अंत संत कहने लगा, अरे मूर्ख, तू गुरु के समान मुझे ज्ञान देने के लिए आया है? मेरे यहाँ लंका के पास समुद्र के किनारे आश्रम में रहकर मेरी कृपा पर जीने वाला है और आज तू मुझे यहाँ तक कहने का साहस कर लिया कि वो मारे तो मर जाओ? क्या रावण ऐसा ही है, कोई सामान्य कीड़ा मकोड़ा है कि मारो और मर जाओ? मेरे समान संसार में कौन योद्धा है? इसलिए मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हें यहां आज ही मार दूंगा। मारीस ने हृदय में विचार किया, न वही विरोध है नहीं कल्याण, इन नौ आदमियों से कभी विरोध नहीं लेना चाहिए। कौन? एक तो शस्त्र धारण करने, जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे कभी माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए। एक मर्मी जो हमारा भेद जानने वाला हो उससे कभी खटपट नहीं करना, नहीं तो हमारे भेद की बात कहीं जाकर बोल देगा। एक राजा है सामर्थ्यवान है, उसके साथ बैर विरोध मत करो। एक जो सठ माने दुष्ट आदमी है उससे भी बैर विरोध मत करो। एक धनवान आदमी है उससे बैर विरोध मत करो। एक बैजी है, बैजी से भी बैर विरोध मत करो। बैद बंदी, और एक जो ये बंदी है भाट वगैरह होते हैं इनसे बैर विरोध मत करो। एक कवि से बैर विरोध मत करो। अरे एक भानस गुनी, एक माने रसोई बनाने वाले होते हैं, इनसे बैर विरोध मत करो। ये नौ है, इन नौ आदमियों से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये रावण इन नौ में से क्या है, शस्त्री भी है और मर्मी भी है, ये सामर्थ्यवान भी है, दुष्ट भी है, ये धनवान भी है, ये तो बहुत जो है बात वाला हो गया। इसलिए इसके अब इसके साथ में बैर विरोध ठीक नहीं है। अब मेरा तो मरना निश्चित है, जाऊंगा तो मरूंगा और नहीं जाऊंगा तो भी मैं मरूंगा। ऐसा विचार करके वो भगवान की तरफ देखने लग गया हृदय से, क्या सुंदर भगवान का रूप है, ऐसी ऐसी जटा है, ऐसा उन्होंने वस्त्र पहन रखा है, क्या श्यामल स्वरूप है। उनके हाथ में धनुष बाण कितने अच्छे लगते हैं। तब ताके सी रघुनायक शरणा, राम जी के बाण से मरना तो मेरे लिए जन्म जन्मांतर की बहुत बड़ी भक्ति का उदय होने वाला है, उनके हाथ से मरना। ऐसा विचार करके वो सोचने लगा, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हूँ, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। आहा, आज तो रावण ने मेरा सौभाग्य जागृत कर दिया, अपने परम प्रीतम को जाकर देखूंगा। अरे यहाँ भजन करते करते मरता, उसकी अपेक्षा तो अब भगवान के दर्शन करते करते मरूंगा, मेरा नेत्र सफल हो जाएगा, मैं लक्ष्मी जी सहित श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत के दर्शन करूंगा। अरे जिनका क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, ऐसा विचार करके जो ऋषि मुनि भक्ति करने वाले हैं, वे भक्ति ऐसी विचित्र चीज है कि जो अवश्य ही बस करी, जो कभी भगवान के वश में नहीं होता वो भी वश में हो जाया करता है। ऐसे भगवान के दर्शन करूंगा, अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए आनंद के सागर भगवान मुझे मारेंगे, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, दुनिया के जितने भी भगत हैं वे पीछे पीछे दौड़ते हैं, भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। मेरी ये रीति उल्टी होगी कि मैं तो आगे आगे दौड़ूंगा और आज भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आहा, मेरा तो भाग्य खुल गया, धन्य न मोसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं है। ऐसा विचार करके और वो वहां से रवाना हो गया और पंचवटी क्षेत्र में दोनों के दोनों रावण और मारीच पहुंच गए। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, जय जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम,